السلام علیکم، یہ 537 ہے، ناول کال بیل، حصہ اول۔ یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آواز کمل خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل۔ مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225۔ تو آئیے سنتے ہیں 537 میں، جو لاجک کے بغیر کچھ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال اس پتھر کی افادیت کا قائل ہو چکا تھا۔ قائل کرنے میں دادا کی بیماری کے دوران کا واقعہ اہم تھا۔ اسے آپ میرے اعتقاد کی انتہا کہہ لیں یا جو کچھ بھی، میں بھی ابھی ان یوں ہی کھڑا طیب کی طرف دیکھ رہا تھا کہ جانا اس میں حرکت ہوئی اور نوالا چبانے لگا۔ میں اچھل پڑا۔ وہ یوں نظر سالن کی پلیٹ پر جمائے تھا جسے نارمل حالت میں کھانا کھا رہا ہو۔ شاید اسے احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اب سے پہلے وہ کس حالت میں تھا۔ میرے اچھلنے اور اس کی طرف لپکنے پر اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولا، تم کھا چکے؟ ہاں، میں نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا، لوٹا اور اس کی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس دوران میں ایاز جانے کب واپس آ چکا تھا، اب تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رنگ بالکل سفید تھا۔ اچھا ہی ہوا کہ وہ کمرے سے باہر چلا گیا، ورنہ جانے کیا کہہ دیتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ طیب کو کچھ پتا چلے۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے کیا محسوس ہوا تھا۔ ہاں طیب، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میں کہہ رہا تھا کہ تم جب جیا کو دیکھو گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ دنیا میں کس قدر حسین چیزیں موجود ہیں۔ مگر یار، ایک بات تو بتاؤ، یہ تم ہو کس ٹائپ کے؟ میں مسکرا اٹھا۔ اس کی وجہ ایک تو اطمینان تھا کہ ذہنی طور پر وہی تھا جہاں اس حالت میں جانے سے قبل تھا، دوسرے اس کے انداز سے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کسی تبدیلی سے واقف ہے۔ بس طیب، میں کچھ اسی ٹائپ کا ہوں۔ بہرحال کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم فی الوقت اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ؟ کن حرکتوں سے؟ اس نے ناگواری سے میری طرف دیکھا۔ یہی عورتوں سے میل ملاب اور دوستیاں والی حرکتوں سے۔ تو کیا میں مر جاؤں؟ اس میں مرنے کی کیا بات ہے؟ نہ تو میں جب غیر فطری زندگی گزاروں تو بھلا کیوں؟ تمہاری کیا زبردستی ہے کہ میں فطرت سے ہٹ کر زندہ رہوں؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ تم فطرت سے ہٹ کر کوئی کام کرو۔ میں نے کہا ہے کہ فی الوقت ان حالات میں اس حرکت سے اجتناب کرو۔ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے۔ تو کس حکیم نے کہا ہے کہ زندگی کا کچھ حصہ غیر فطری سٹائل میں بسر کرو؟ میں نے نیپکن سے ہاتھ اور منہ پوچھتے ہوئے سامنے رکھی پلیٹ سرکا دی۔ میں تمہیں اپنے ڈھب پر لانے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھ سے ہی چکر چلا رہے ہو۔ وہ اچھے موڈ میں تھا۔ میں جان گیا کہ اسے یوں سیدھے سادھے طریقے سے میں کسی بھی حال میں قائل نہیں کر سکتا۔ اسی وقت ایاز چائے لے آیا۔ کمرے میں گھستے ہی اس کی خوف زدہ نگاہیں طیب کی طرف اٹھ گئیں۔ طیب کی نگاہ بھی اس پر پڑی۔ وہ کچھ چونک سا گیا۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے ہوئے پوچھا۔ باہر کوئی بھوت وغیرہ ہے کیا؟ نہیں صاحب، آپ ایاز جاؤ، تم جا کر سو جاؤ۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایاز نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر سمجھ گیا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ جلدی سے چپ ہو کر कमरे से निकल गया। मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए सोचने लगा कि क्या करूं। अब इसे हालात से आगाह करना जरूरी हो गया था, वरना वो न संजीदा होने को तैयार था न मेरी बातों पर ध्यान देने को। एक फैसला मैं इसकी खौफनाक हालत के दरमियान में कर चुका था कि इससे पहले के घर वाले आए मुझे ये घर छोड़ देना चाहिए। इसके बारे में तैयब को एतमाद में लेना बहुत जरूरी था। फिर मैंने धीरे धीरे इसे सब कुछ बता दिया। जब पत्थर का जिक्र आया तो इसने चौंक कर अपनी गोद की तरफ देखा, पत्थर को दो उंगलियों के दरमियान में दबाकर देखा। इसके चेहरे पर संजीदगी के साथ हल्का सा खौफ भी था। जिया, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम अयाज से पूछ सकते हो। इसने तो ये भी बताया था कि जब तुम मुझे छोड़कर आए थे और फोन की घंटी बजने पर फोन उठा लिया था, इसके बाद भी तुम कम से कम 15 मिनट तक इसी हालत में रहे थे। और फिर अब देखो तैयब, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूँ, एक संजीदा और बुर्दबार इंसान हूँ, एक अच्छी जॉब से मुंसलिक हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है कि फजूल और गलत बातों पर अपना वक्त जाया करूँ। मैं अगर छुट्टी लेकर यहाँ आया हूँ तो इसकी वजह इंतहाई माकूल और मेरे नज़दीक इंतहाई अहम है। वो जो अमवात हमारे खानदान में हो चुकी है वो मुस्लिम हकीकत है, कोई मजाक नहीं। मेरा ख्याल है कि तुम्हें संजीदा होकर मेरा साथ देना चाहिए। बात बहुत बढ़ चुकी है, घर के लौट आने वाले हैं। मैं किसी भी हाल में नहीं चाहता कि इन लोगों को किसी भी किस्म की तकलीफ हो। ज्यूसा वो जो भी है, इसकी एक्टिविटीज यहाँ बढ़ती जा रही है और ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। तुम इस मामले में मुलव्वस हो चुके हो, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि इसे समझने और संजीदगी से तवज्जो देने की कोशिश करो। मैं अकेला हूँ, मुझे ऐसे में एक साथी की शदीद जरूरत है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इसने अचानक पुरजोश अंदाज में कहा। मुझे इसका अंदाज देखकर खुशी हुई, मगर तुम खुद पर काबू पाने से कासिर हो और तुम्हारी कमजोरी है, इस पर तुम्हें मुकम्मल कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए कि ज्यूसा खुद एक औरत है। औरत है, वो हंसा। मेरा मतलब है कि वो जो भी है तो मोनस, और मेरा ख्याल है कि मोनिका का इससे ताल्लुक है। क्या तुम होश में तो हो? मैं ठीक कह रहा हूँ तैयब, शायद तुम अभी मेरी बात का यकीन ना करो, मगर मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्दी कायल हो जाओगे। ठीक है जिया, मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, मगर एक शर्त पर। वो कुछ आगे को सरक कर बैठ गया। बोलो। ये कि जब ये चक्कर खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। मेरा जी चाहा कि मैं मेज के बीचों बीच रखा भारी गुलदान इसके सर पर दे मारूं, मगर मैं बर्दाश्त कर गया। किस सिलसिले में? फरहत से शादी करने वाले के सिलसिले में। मुझे यूं लगा जैसे किसी तेज धार चीज से मुझे दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया हो। मैंने अपने हाथों से कुर्सी को नीचे से सख्ती से थाम लिया और खुद पर काबू पा लिया। वो इस्तफहामिया अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। ठीक है, फिर वक्त तुम इन बातों को जहन से निकाल दो, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। मैं नॉर्मल हो चुका था। इस मामले को संभालने के लिए अभी मेरे पास बड़ा वक्त था। वो मेरी बात सुनकर खुश हो गया, फिर बोला, ओके, अब बताओ मुझे क्या करना है। सबसे पहले तो मेरे रहने का कहीं और बंदोबस्त करो, मैं यहाँ से इस सिलसिले को खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, अंधेरी में मेरे एक दोस्त की कोठी है, वो खुद दुबई में होता है, अकेला है, वहीं कारोबार करता है, बहुत अय्याश तबीयत का मालिक है। जब तक यहाँ रहा इसने अपने घर को कबाब खाना बनाए रखा। दौलत की कमी नहीं है, इसलिए कोठी को बेचने या किराए पर उठाने के बजाय यूं ही छोड़ गया। चाबी मुझे दे गया है और मैं, वो आगे कुछ कहते कहते जरा झुक गया। और क्या, मैंने इसकी आंखों में झांका। मैं कभी कभी वहाँ जाता रहता था, मेरा मतलब है कि कभी कभी वहाँ पार्टीज का एहतमाम करता था, मेरे कुछ दोस्त। ठीक है, मैं समझ गया, मगर तैयब मेरे वहाँ रहने के बाद तुम्हारी ये अय्याशियाँ वहाँ नहीं चलेंगी, इसलिए तुम सोच लो। नहीं नहीं, अब तो मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ, आज से सब खत्म। लेकिन ये मसला खत्म होने के बाद तुम मुझे नहीं रोकोगे? हाँ, जब मैं वो घर छोड़ दूंगा तो जो चाहे करना। चलो ये तो हो गया। वैसे तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद ज्यूसा यहाँ कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएगी? वो सिर्फ मेरे पीछे पड़ी हुई है, जो कुछ वो यहाँ कर रही है इसका ताल्लुक भी मुझसे है। वो मुझे परेशान कर रही है, मुझे यकीन है कि मेरे यहाँ से जाने के बाद वो बेवजह इन लोगों को परेशान नहीं करेगी। और मैं बकौल तुम्हारे, अब तो मैं भी इसके चक्कर में आ चुका हूँ। तुम ये पत्थर अपने पास रख लो, मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, वो पत्थर मेरे लिए बहुत अहम था। शारी बाबा कह चुके थे कि तुम हमेशा इसे अपने पास रखना, वरना किसी परेशानी में पड़ सकते हो। मगर मैं अपनी वजह से तैयब को किसी किस्म की तकलीफ उठाते नहीं देख सकता था। मैं शारी बाबा को तलाश कर सकता था, और जब तक वो ना मिलते इस वक्त तक खुदा से दुआ कर सकता था कि वो मुझे अपनी पनाह में रखे। बहरहाल मैं हर अज़ियत बर्दाश्त कर सकता था, मगर तैयब को किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहता था। और तुम क्या करोगे, इसे भी मेरी फिक्र थी। अल्लाह मालिक है, मैं अपना दफा कर सकता हूँ, तुम फिक्र ना करो। अब पहली फुर्सत में इस घर का इंतजाम करो, वहाँ और कोई है, मेरा मतलब है कि कोई मुलाजमा वगैरह? हाँ, एक औरत है क्रिश्चियन, एलिसा, वो घर की देखभाल करती है, वही एक कमरे में रहती है। वैसे तुम फिक्र ना करो, वो बूढ़ी औरत है, बहुत कम गो है, ऊपर की मंजिल पर एक कमरा और किचन बना हुआ है, वो इसके इस्तेमाल में है, वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। मैं अभी फोन करके इसे कह देता हूँ कि तुम सुबह आ रहे हो। इस गैर संजीदा से तैयब ने मेरे एक बहुत बड़ा मसला हल कर दिया था। मुझे खुशी हुई, मुझे यहाँ आए 4 रोज हो चुके थे, मैं वक्त के जाया पर काफी परेशान था, मगर अब मैं मुतमईन हो चुका था। मैं हर किस्म के हालात से निमटने के लिए तैयार था। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ रह लूं, तैयब ने ख्वाहिश का इजहार किया। नहीं, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। वैसे अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मुझे तुम्हारे साथ ही तो रहना पड़ेगा ना? नहीं, जरूरी नहीं है, तुम आ जाया करना, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर छोड़ने पर घर वाले पूछ गछ करें। ये कोई ऐसी बात नहीं है, तुम आए हुए हो और वहाँ रह रहे हो तो मैं भी वहाँ रह सकता हूँ। चलो बाद में देखेंगे, फिलहाल तुम फोन करो वहाँ। चाय खत्म किए हुए देर हो चुकी थी, हम वहाँ से उठ गए। इसी वक्त तैयब चौंक उठा। अरे हाँ, तुम्हारा जख्म, क्या वाकई वो दुरुस्त कह रही थी? इतना कहकर इसने मेरे पैर को देखा और फिर मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी, इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। मैंने सिर्फ मुस्कुराने पर इक्तफा किया, बस के मैं के چہرے کا خوف پہلے بے یقینی میں پھر یقین میں بدل گیا. حیرت انگیز, یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ہے ضیا. مجھے پر اسراریت سے بے پناہ دلچسپی ہے. میں جانتا ہوں لیکن بھیا جی سب دلچسپی ہوا ہو جائے گی اگر کچھ تمہارے ساتھ پیش آ گیا تو. اس لیے کہتا ہوں کہ ہمت پیدا کرو. بڑی ہمت ہے مجھ میں, دیکھ لینا تم, وہ پرجوش انداز میں بولا. چلو, میں نے مسکرا کر کہا. وہ آگے بڑھ گیا. ہم ہال سے ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر طیب کے کمرے میں چلے آئے. رات کافی گہری ہو چکی تھی. ایاز غالباً اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا. ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی. بجلی بڑے زور سے چمکی تو احساس ہوا کہ باہر مطلع آبر آلود ہے. کچھ ہلکے ہلکے بادل تو شام ہی سے آسمانوں پر بھٹکتے پھر رہے تھے, مگر اس وقت بارش کا کوئی امکان نہیں تھا. طیب نے نمبر ڈائل کیا, پھر چند لمحے بعد بولا, ہیلو ایلیسا, میں طیب ہوں, کیسی ہو تم؟ پھر چند لمحے چپ رہا اور بولا, ایلیسیا, میرا ایک دوست دہلی سے آیا ہے, کل صبح میں اسے لے کر وہاں آ رہا ہوں, وہ کچھ عرصے تک وہیں رہے گا. تم ذرا صفائی وغیرہ کر لو. ہاں ہاں, وہ اکیلا ہے. ٹھیک ہے, کل میں تمام سامان ڈال دوں گا. ہاں اچھا ٹھیک ہے, ہم 11 بجے تک پہنچ جائیں گے. ہاں وہ سب میں لیتا آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, میرے خیال میں اسے کوئی دشواری نہیں ہوگی. نہیں نہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ بڑا سلجھا ہوا اور شریف آدمی ہے. تمہاری بیٹی جب تک چاہے رہے. نہیں, وہ ایسا آدمی نہیں ہے, تم خود اس سے ملو گی تو جان جاؤ گی. اوکے, پھر کل ملاقات ہوگی, گڈ بائے. کیا ہوا؟ اس کے سیوا رکھتے ہی میں نے پوچھا. اس کی ایک ہی بیٹی ہے, گوا میں رہتی تھی. اس کا شوہر اسے مارتا پیٹتا تھا. اس نے طلاق لے لی ہے اور اب وہ ماں کے پاس وہیں آ گئی ہے. ایلسیا پریشان تھی کہ وہ کہاں بھیجے گی اسے. میں نے کہہ دیا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں وہ میرے دوست شیخر اور اس کے دوستوں سے واقف ہے, اور آلون وہ یہ بات مجھے بھی سنا رہی تھی تاکہ میں کسی قسم کی پارٹیز وغیرہ کا اہتمام نہ کر لوں. اپنے دوست کے اعزاز میں میں نے اسے اطمینان دلا دیا ہے. کل میں سویرے آفس جا کر جلدی لوٹ آؤں گا, تمہاری ضرورت کی چیزیں لے لیں گے, پھر وہاں چلیں گے. ٹھیک ہے, میں تمہیں تیار ملوں گا. میں اٹھ کھڑا ہوا, مجھے نیند آ رہی ہے. تم بھی سو جاؤ. اور ہاں, وہ پتھر, یہ ہے, اس نے ہتھیلی کھول دی. اسے کسی کپڑے وغیرہ میں ڈال کر بازو پر باندھ لو, یہ بہت ضروری ہے. اس نے سعادت مندوں کی طرح سر ہلایا. میں اپنے کمرے میں چلا آیا. مجھے بے پناہ تھکن تھی. میں آج کے گزرے ہوئے دن کی جزیات پر سوچنا چاہتا تھا, مگر میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی. میں نے کپڑے بدلے اور بستر میں گھس گیا. بارش شروع ہو چکی تھی اور کافی زوردار بارش تھی. خنکی بھی بہت بڑھ گئی تھی. ہوا سرد تھی, کمرہ ٹھنڈا ہو رہا تھا. میں نے کمبل اپنے گرد لپیٹ لیا اور لائٹ بجھا کر کروٹ لے لی. دوسرے دن میں ابھی سو کر بھی نہیں اٹھا تھا کہ طیب آفس سے ہو کر لوٹ آیا. اسی نے مجھے اٹھایا. میں نے ہلکا سا ناشتہ کیا اور اپنا سامان لے کر اس کے ساتھ نکل آیا. طیب کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر مختلف تھیلے اور لفافے رکھے تھے. اس نے بتایا کہ یہ وہ راشن اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو وہ میرے لیے لایا ہے. میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں پریشان نہ ہو. اس نے برا مانا. اس کا کہنا تھا کہ میں کیوں کہ اس کا مہمان ہوں, اس لیے فضول تکلف کی باتیں نہ کرو. راستے میں ہم زیادہ تر वही बातें करते रहे कि अब देखते हैं जीवसा क्या करती है। मैंने इसे ताकीद की कि अय्याज को सख्ती से मना कर दे कि वो इसके फोन का या इसके साथ होने वाले किसी मामले का जिक्र घर के अफराद से ना करे। दूसरी ताकीद ये की कि अपनी मौजूदगी में फोन वो खुद उठाए और अगर दूसरी जानिब जूसा हो तो इसे मेरा नंबर देकर साफ कह दे कि मैं ये घर छोड़ चुका हूँ। जरा भी जाहिर ना करे कि वो मेरे या इसके किसी पुरस्कार चक्कर के बारे में जानता है। यही जाहिर करे कि वो इसे मेरी दोस्त समझ रहा है। हमें ये भी डर था कि तैयब की गैर मौजूदगी में इसका फोन आ सकता है, मगर इस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते थे। यही बातें करते करते हम अंधेरी पहुंच गए। वहां रेलवे लाइन के करीब ही एक बहुत कदीम तर्ज पर बनी कोठी थी, जिसके बाहर एक बड़ा लॉन था जिसकी मुसलसल देखभाल हो रही थी, क्योंकि यहाँ पौधे तरतीब में लगे थे और सरसब्ज थे। बाहर का आहता लोहे की बारीक सलाखों से बना हुआ था। एक बड़ा गेट था। इस गेट के दाएं जानिब किसी शेखर गुप्ता के नाम की प्लेट लगी हुई थी। ये सीमेंट ही की प्लेट थी जिसे दीवार में चुना गया था। इस नीम प्लेट के ऊपर एक उभरी हुई कॉल बेल लगी थी। ऐसी कॉल बेलें पुराने जमाने में इस्तेमाल हुआ करती थी। कॉल बेल से एक सिया रंग का बिजली का मोटा सा तार अंदर की तरफ चला गया था। अंदर की इमारत मटियाले रंग की थी जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां थी। मेन इमारत का दरवाजा काफी चौड़ा था और यहाँ से साफ दिखाई दे रहा था। गेट के सामने बारीक बजरी डालकर रविश से बनाई हुई थी जो इस मेन दरवाजे के सामने की चंद सीढ़ियों तक जाती थी। दाएं जानिब टीन का छज्जा सा बना हुआ था जहाँ गालबन काठ कबाड़ पड़ा था। वहीं करीब एक दीवार से दूसरी दीवार तक मोटी सी रस्सी बंधी हुई थी और इस पर कुछ रंगीन और जनाना कपड़े फैले हुए थे। तैयब ने गेट के एन सामने गाड़ी खड़ी की और खुद उतरकर गाड़ी में रखे थैले लिफाफे और पैकेट उठाने लगा। फिर पलट कर मुझसे बोला, कॉल बेल बजाओ। मैं आगे बढ़ा। मैंने कॉल बेल बजाई और झटके से हाथ हटा लिया। मुझे यूं लगा था जैसे इसमें करंट दौड़ रहा हो। क्या हुआ, तैयब ने करीब आते हुए पूछा। मैं हाथ झटक रहा था। शायद करंट आ रहा है, मैंने जवाब दिया। हाँ, रात बारिश हुई है, दीवारें गीली हैं, इसलिए। अभी इसने बात पूरी नहीं की थी कि गेट का लॉक जो अंदर से लगा हुआ था एक खटके से खुल गया। मैंने हैरत से देखा, ये खुद कार लॉक है, इसे खोलने और बंद करने का सिस्टम अंदर है। तैयब ने आगे बढ़ते हुए जवाब दिया, मैंने कुछ पैकेट इसके हाथ से लेना चाहा, इसने मना कर दिया क्योंकि मैं पहले ही अपना अटैची केस उठाए हुए था। मैं इसके पीछे चलता हुआ मेन इमारत के दरवाजे तक पहुंच गया। तैयब ने फिर एक तरफ इशारा किया, इस कॉल बेल को बजाओ। मैंने देखा यहाँ भी दाएं जानिब वैसी ही काले रंग की कॉल बेल लगी थी जिसके बीचों बीच सुर्ख रंग का बटन था। मैंने इस सुर्ख रंग के बटन पर उंगली रख दी और फिर मुझे बड़ी जोर का झटका लगा। मैं सीढ़ी से गिरते गिरते बचा। तैयब हंसने लगा और बोला, इसलिए तुमसे कहा था। मुझे भी हंसी आ गई। एन इसी वक्त किसी ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही मैं साख्त रह गया। अपने पीछे मैंने तैयब के हाथ से गिरने वाले पैकेट्स की आवाजें सुनी। फिर मेरे कानों में सीटियां सी बजती महसूस हुई, साथ ही तैयब की आवाज आई, आप मैं से नहीं जानता था। मेरे कानों में बजने वाली सीटियों का सबब वो जहनी झटका जो दरवाजा खुलते ही इसकी चमकदार आंखों से निकलने वाली शॉन एक करण की सी सूरत इख्तियार करके मुझे पहुंचाया था। यूं लगा था जैसे इसमें न जाने कितने पावर के इलेक्ट्रिक सिटी दौड़ रही थी, जो इसे छुए बगैर मेरे जिस्म में करंट दौड़ गई। अजीब सी सफेद कपड़ों में मुलविस वो लड़की बुलाशबा दुनिया की हसीन तरीन लड़की थी। मेरे ख्याल में हुस्न का कोई पैमाना नहीं, आंखें बड़ी या गुलाफी या बादामी होना, गहरी सिया झील जैसी होना, नाक सतवा और छोटी होना, दहाना छोटा या बड़ा होना और होंठ पतले या गदास होना हुसन का मायार नहीं, बल्कि वो अजीब गरीब और पुरसासी मकनातीसियत ही हुसन का सबूत होती है, जो देखने वाले को मबहूत कर दे या चौंका दे, इसे मुड़कर देखने या तकते रह जाने पर मजबूर कर दे। वो ऐसी ही हसीन थी। मैं मबहूत खड़ा था, खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मैं तेज आंधी की जिद पर हूँ जो मुझे आगे की तरफ धकेल रही है और मैं आगे बढ़ना नहीं चाह रहा, कदम जमाने की कोशिश कर रहा हूँ जबकि आंधी मेरे पांव उखाड़ दे रही है। मैंने बेसाख्ता दरवाजे की चौखट को इतनी सख्ती से पकड़ लिया कि मेरी उंगलियों के ऊपर के हिस्से सफेद हो गए। हमारे बीच गहरा सन्नाटा था। जी घंटियां सी बजी थी, नहीं जल तरंग नहीं बल्कि कोई और सांस था, कोई ऐसा सांस जो शायद अभी ईजाद नहीं हुआ, जिसकी आवाज का तसव्वुर इंसानी जहन कर ही नहीं पाया। मौसीकी थी जो आदमी के अंदर की हर तार को छेड़ देती है और फिर वो बहुत देर तक बजता ही रहता है। वो जी तैयब भी शायद आंधी के इन्हीं झकड़ों से लड़ रहा था जिनसे लड़ते लड़ते मेरे एहसास शल हो चुके थे। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मोनालिसा की मुस्कुराहट तो बहुत बकवास मुस्कुराहट है। पता नहीं वो कितना बदसौक आदमी था जिसने पहली बार अपनी महबूबा की मुस्कुराहट को मोनालिसा की मुस्कुराहट से तशबीह दी थी। यकीनन इसने तंस किया होगा। अब मैं आपको क्या बताऊं कि इसकी मुस्कुराहट क्या थी, कैसी थी, और इस मुस्कुराहट ने हमारी आंखों के सामने बिखरी धूप में भी कहकशा सी बिखेर दी थी। हमें यूं लगा था यानी मुझे कि जैसे मेरे चारों तरफ गहरा अंधेरा हो, बस सामने कहकशा दूर तक फैल चुकी है। मैंने सहराओं में आग बरसाते सूरज से मुनक्कस होने वाली शुआओं को रेत के जर्रों में भरते और फिर इन्हें सोने की जर्रों में तब्दील होते भी देखा है, मगर मैं इनकी तशबीह भी मुनासिब नहीं समझता। मैंने तेजी से साहिल की तरफ आती बल खाती इन लहरों की चमक भी देखी है जो डूबते सूरज का शफ़ रंग चुरा कर भाग उठती हैं। मैंने चांदनी रात में फूलों की पत्तियों पर टिके ओस के कतरों में कैद हो जाने वाले नन्हे से चांद की भरपूर चमक देखी है। बस मैं बता नहीं सकता कि वो मुस्कुराहट कैसी थी। मैं दर हकीकत इसके हुस्न की ताप नहीं पा रहा था और ये मेरे लिए एक हैरत अंगेज और बहुत ही अजीब लम्हा था। आपको किससे मिलना है, इसने पूरा जुमला अदा किया। मेरे सर के ऊपर कहीं बगोले से उड़ गए। सनसनाहट ने मेरी पिंडलियों में बिजली सी दौड़ा दी। फिर मेरी गिरफ्त दरवाजे की चौखट पर ढीली पड़ गई। ये नॉवेल कॉलबेर हिस्सा वल का बकिया हिस्सा पार्ट 38 में समाप्त फरमाए।